नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
We have about 80 companies.
हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
श्री गोयल 200 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 दिन की जापान यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर में आज गवर्नमेंट पॉपकॉर्निक परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों के करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग और 44% महिलाएं शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1.78 करोड़ लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गई है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जाँच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से CBI को सौंपने की मांग की गई थी। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टरों को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह, पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।